ओम शांति। अभी हम सब नए वर्ष में नए युग का आगमन करने के लिए 2014 को विदाई देने जा रहे हैं। बाबा ने बहुत अच्छे होमवर्क हम सबको दिए। 25 तारीख को भी हम सब ने बाबा की बहुत सुंदर प्रेरणाएं सुनी हैं। अचानक के पेपर में पास होने के लिए सदाकाल का पुरुषार्थ अटेंशन से करना है, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। जो हम सबका लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना, उस लक्ष्य को सामने रख करके हमारे जीवन में लक्षण आते जाएं, उसके लिए बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज। हो जाएगा, कर लेंगे, बन जाएंगे, ये अलबेलेपन की भाषा भी यूज नहीं करना। कोई भी कमी कमजोरी दिखाई दे तो संकल्प में दृढ़ता ला करके उसको परिवर्तित करना। तो बाबा ने हम सबको बहुत अच्छा होमवर्क दिया और ड्रामानुसार कल अव्यक्त बाबा की जो मुरली सुनी रिवाइज कोर्स की, उसमें भी नए वर्ष के लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त हुई हैं। इस वर्ष को मेहनत मुक्त वर्ष मनाना, विजयी वर्ष के रूप में मनाना, व्यर्थ और नेगेटिव को समाप्त करने के मुक्ति वर्ष मनाना, बहुत अच्छी तरह से हम सब ने बाबा की मुरली सुनी है, चिंतन भी किया होगा, विधियां भी बाबा समय प्रसमय सुनाते हैं और इस मुरली में भी बहुत सी विधियां सुनाई हैं। जैसे एक विधि बताई, हर आत्मा के प्रति दिल खुश मिठाई सदा खाना और खिलाना, और शुभ भावना की गिफ्ट सबको देते रहना, मधुर बोल की मिठाई खाना और खिलाना। तो ये सब बातें तो बहुत ऐसे लगती हैं जैसे बहुत कॉमन बातें हैं, लेकिन इसमें सारा पुरुषार्थ समाया हुआ है। अगर ब्राह्मण आत्माएं, हम सभी बाबा के बच्चे, इन छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा अटेंशन दें तो बहुत तीव्र गति का पुरुषार्थ हो सकता है। सबसे अटेंशन ये है, जनवरी मास में हम सभी बाबा का अव्यक्त मास मनाते हैं और सभी ब्राह्मणों के अंदर ब्रह्मा बाबा से बहुत जिगरी प्यार है, प्यार है ना सबका, और हम सब साकार रूप में ब्रह्मा बाबा के ही कदम पर कदम रख करके आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य ही है कि जैसे बाबा अव्यक्त में रहते अव्यक्त बन गए, सब कुछ संभालते, जवाबदारियां निभाते, जीवन मुक्त स्थिति में रहे, इतने बड़े परिवार के बीच में रहते भी सबके प्यारे सबसे न्यारे बन करके रहे और गुप्त पुरुषार्थ करके कर्मातीत बन गए। तो ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को तो हम सब जानते हैं और जनवरी मास के लिए मधुबन से हर मास हर वर्ष होमवर्क भेजा जाता है, इस बार भी गया है। जो मधुबन में होंगे वो भी पहली तारीख से रोज मुरली के नीचे अव्यक्त स्थिति बनाने की एक पॉइंट सुनेंगे। लेकिन आज मुझे नए वर्ष के लिए क्या प्रेरणाएं आ रही हैं वो कुछ आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सेवाएं तो बहुत फास्ट गति से बढ़ रही हैं। बाबा की प्रत्यक्षता के दिन भी बहुत समीप दिखाई दे रहे हैं। हाहाकार जय जयकार ये दोनों दृश्य एक साथ होंगे, उसके पहले सर्वात्माओं को बाबा का संदेश भी मिल जाए और हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपनी संपन्न संपूर्ण स्थिति को भी प्राप्त कर लें। उसके लिए 12 मास का ही होमवर्क तैयार किया गया है। क्या करें हम 12 मास पूरे 2015 को कैसे मनाएं, उसका होमवर्क तैयार किया है, सबको भेजेंगे। लेकिन जनवरी मास को हम सब अव्यक्त मास के रूप में मनाते हैं, इसलिए आप सभी जो मधुबन में बैठे हैं, कॉलोनी में रहते हैं या पार्टी से भी आए हैं, सबको कुछ बातें अंडरलाइन कराता हूँ, क्योंकि इस साल का ये लास्ट क्लास है 2014, फिर 15 शुरू होगा। तो हम सभी अगर संगम युग की सर्वोच्च स्थितियों पर थोड़ा ध्यान दें, संगम युग की सर्वोच्च स्थितियां क्या हैं और वो कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, पूरे मास में हम सब उसका अनुभव करें। सबसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च स्थिति 6-7 आपको सुनाऊंगा। अगर एक हफ्ते के अंदर भी एक स्थिति का अभ्यास करेंगे तो पूरा मास एक बहुत सुंदर रीति से व्यतीत हो सकता है। होमवर्क प्रमाण हम सभी पहले अपनी डबल लाइट अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, ये बहुत ऊंची स्थिति है। और इसके लिए आवश्यक ये होगा, व्यक्त और व्यर्थ जो बाबा ने कल अंडरलाइन कराया कि व्यर्थ और नेगेटिव परिवर्तित हो जाए। जहां पर संकल्प बोल समय श्वास व्यर्थ जा रहा हो, वेस्ट हो रहा हो, उसको बेस्ट बनाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित कर दो। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए हर एक कम से कम रोज 8 घंटे मन और मुख का मौन रखे। हो सकता है जो कर सकते हैं पूरा जनवरी मास सुबह 4 से 8 बजे तक और शाम को 6 से 10। दिन में कारोबार बंद नहीं करनी है, कर्म क्षेत्र पर सेवाएं हर एक के पास हैं वो तो करनी ही है। कईयों की ड्यूटी सवेरे शाम भी होती है, लेकिन अगर लक्ष्य रखेंगे कि हमें 8 घंटा रोज मन और मुख का मौन रखना है तो बहुत सी आंतरिक शक्तियां हमारे पास जमा हो जाएंगी। और पूरे मास का एक चार्ट कि मुझे इस पूरे मास में कम से कम 108 घंटे की तपस्या करनी है, बैठ करके, हो सकता है रोज 3-4 घंटा करना पड़ेगा तब 108 घंटा होगा। अमृत वेला तो हम करते ही हैं, नमाज शाम को भी करते हैं। मैं समझता हूँ हर एक ब्राह्मण 2 घंटा तो योग रोज करता ही है बैठ करके, बाकी ट्रैफिक कंट्रोल दूसरे योग होते हैं। लेकिन अगर रोज हम सब 3 या 4 घंटा अभ्यास करें तो पूरे जनवरी मास में लक्ष्य रखेंगे तो 108 घंटा मुझे तपस्या करनी है। किस लिए करनी है? कोई भी संस्कार स्वभाव, कोई भी प्रकार का सूक्ष्म बोझ भी हो समाप्त हो जाए, क्योंकि वर्तमान समय हम सब ने अपने बोझ बाबा को दे दिए, लेकिन जो रहे हुए पिछले हिसाब किताब हैं उनका बोझ कई बार मन को बहुत डिस्टर्ब कर देता है, खुशी को गायब कर देता है, अचानक निकल आता है। उस हिसाब किताब को भी हम समाप्त करने के लिए सूक्ष्म चेकिंग करें और चेकिंग करते करते उसको चेंज करें। तो इसलिए अगर हम 108 घंटे की तपस्या का लक्ष्य निर्धारित कर लें तो छुट्टी के दिन हम ज्यादा कर सकते हैं, 4 घंटा 5 घंटा भी कर सकते हैं, और अगर बहुत सेवाएं हैं तो लक्ष्य रखें 3 घंटा करें, तो ऐसे करके भी 108 घंटे का चार्ट बन सकता है। हो सकता है जो समझते हैं सहज है कर सकते हैं, पूरे मास की बात है, एक दिन की नहीं है, कर सकते हैं? हाथ उठा रहे हैं माताएं, कर सकती हैं? अच्छा, सभी कर सकते हैं। तो नोट करेंगे रोज चार्ट, आप लोगों को चार्ट दें? अच्छा, तो हम आपके कल यहाँ पर बाहर लगवा देंगे, आप नोट कर लेना, चार्ट की पॉइंट्स बड़े अक्षरों में यहाँ लिखवा देंगे। उसमें संकल्प, बोल, भोजन पर विशेष अटेंशन, शुभ भावना, संकल्प, समर्थ, सेवाएं और दृष्टिवृत्ति, ऐसे 7 टॉपिक 7 पॉइंट्स हैं चार्ट की। ABC ही है, कोई ज्यादा चेकिंग और मेहनत नहीं है, लेकिन सूक्ष्म चेकिंग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा चार्ट रह सकता है। अटेंशन की जरूरत है, सिर्फ बाबा ने कहा अटेंशन, बातें तो हरेक के सामने कोई न कोई आएंगी, बाबा ने वो तो पहले ही कह दिया है, रोकने वाली विघ्न डालने वाली बातें आएंगी, लेकिन अगर संकल्प को रिवाइज करते रहेंगे कि ये बाबा के आगे हमने संकल्प किया है, तो पार हो जाएंगे, मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए एक स्थिति सर्वोच्च स्थिति, डबल लाइट स्थिति रहे और अव्यक्त वतन की मैं सैर करता रहूं, साकार वतन में कम से कम आऊं और साकार वतन से अव्यक्त वतन। बाबा कहता है था ये तो दूसरा कमरा है, जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने कहा बच्चे मैं कहीं गया नहीं हूं, मैंने सिर्फ कमरा चेंज किया है, साकार वतन को अव्यक्त वतन में परिवर्तित कर दिया। अभी भी बाबा की भाषणा मधुबन में आती है ना, साकार में है, तो कमरा चेंज है, बाकी कहीं गया नहीं है। ड्रेस चेंज किया है, मिट्टी की ड्रेस को चेंज करके लाइट की ड्रेस ले लिया है, बिना ड्रेस के तो नहीं है, बिना कमरे के भी नहीं है। अगर अव्यक्त वतन में बाबा से मिलना होता है तो कमरा मिलता है कि नहीं मिलता है? खड़े खड़े मिलता है बाबा, गुलजार दादी को कभी पूछो तो बताएंगी, संदेशियां बताएंगी बाबा कैसे मिलता है। सुना होगा जब बाबा वतन में, दादियां वतन में जाती हैं तो बाबा अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है, अपनी चारपाई पर बैठा हुआ है, वहां मिल रहा है, तो वतन में भी बाबा की गद्दी है, बाबा का कमरा है। तो हम सभी भी इस साकार वतन से अव्यक्त वतन की अनुभूतियों में रहें, डबल लाइट स्थिति कम से कम 7 दिन तो अनुभव करें। और बहुत अच्छा है कि अगर हम अंतर्मुक्ता की गुफा में रहेंगे और बार बार अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे तो लाइट की ड्रेस पहनना बहुत इजी है, सहज हो जाएगा, कोई चिंतन दूसरा नहीं करो, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा, क्यों किसी बातों का बोझ लेकर के मैं घूमूं? बाबा बैठा है, बाबा करण करावनहार है, फिर चिंताएं मैं क्यों लूं? तो पहली स्थिति डबल लाइट स्थिति, और दूसरी एक और श्रेष्ठ स्थिति है मुक्त स्थिति, मुक्त इस देह के बंधन से, संस्कारों के बंधन से, संबंधों के बंधन से, वस्तुओं के बंधन से। जैसे कोई पिंजड़े में बंधा हुआ हो, आजकल की आत्माओं का हाल क्या है, पिंजड़े में फंस गए हैं, निकल ही नहीं पाते। पिंजड़े में फंसा हुआ पंछी कितना तड़फता है, आत्मा भी इस देह के पिंजड़े में फंस चुकी है, कहीं न कहीं किसी न किसी स्वभाव के, संस्कार के, आदतों के बंधन में बंध गई है। कोई न कोई संबंध कहीं लगाव झुकाव प्रभाव दबाव के रूप में उसको खींच रहे हैं, बंधी हुई है सभी आत्माएं। चेक करेंगे ना तो कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, वो खींचता है बंधन अपनी तरफ। इसके लिए बार बार इस देह से डिटैच होने का अभ्यास, कर्म इंद्रियों को जैसे ढीला छोड़ दिया और भ्रकुटी आसन पर बैठ गए, चमकते हुए सितारे को देखा और बाबा सितारे के साथ जुड़ गए, मुक्त हो जाएंगे। कोई कर्म इंद्रिय खींचेगी नहीं, भले कोई दर्द भी हो रहा हो। दादी को देखते हैं, शरीरी स्थिति का अभ्यास है, बहुत दर्द, शरीर का हिसाब किताब होता है, लेकिन वो एक सेकंड में अपने आप को समेट करके भ्रकुटी आसन पर बैठ के अशरीरी हो जाते, मुक्त स्थिति का अनुभव। तो हम सभी भी बीच बीच में इस देह से मुक्त होने का अभ्यास करें। मुक्त होना माना ऐसा नहीं शरीर छोड़ देंगे, हैं शरीर के अंदर ही, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे एकदम अलग हैं, न्यारे हैं, प्यारे हैं, बिल्कुल चमकती हुई ज्योति हैं, ये शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग हूं, कोई खिंचाव नहीं होगा, कोई कर्म इंद्रिय अपनी तरफ खींचेगी नहीं। और कई बार ये अनुभव आप लोग करते होंगे, ऐसा नहीं नहीं करते, योग में करते हैं, लेकिन वो योग ऐसा न हो जाए जो लोगों को लगे पता नहीं क्या हो गया इसको, शरीर से चेहरे से ऐसा बदलता हुआ रूप न दिखाई देने लगे, सफेद चेहरा न हो जाए, नहीं तो लोग डर जाएंगे। इसलिए बहुत न्यारी प्यारी स्थिति, मुक्त स्थिति बहुत सर्वोच्च स्थिति है, अभ्यास करके देखना। तीसरी एक अचल स्थिति, एकदम अचल अडोल, कोई हलचल कितनी भी बातें क्यों न, जैसे सागर में लहरें उठती हैं ना, बहुत तूफान आते हैं, बहुत लहरें होती हैं, लेकिन अगर कोई तले में चला जाए तो एकदम शांत, हलचल नहीं है, अचल है। गहराई में जितना गए उतना अचल है, ऊपर जितना है उतना लहरें हैं। तो लहरें कितनी भी संसार की हैं, कोई न कोई बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन वो हिला न दे मेरी स्थिति को, क्यों क्या कैसे मैं उलझा न दे। बहुत से ब्राह्मण इसमें बहुत उलझ करके अपना समय शक्तियां, कितने खजाने कल बाबा ने बताए, समय संकल्प श्वास गुण शक्ति सब थोड़ी सी हलचल में हमारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए कोई भी बातें, कोई भी परीक्षाएं, कितने भी बड़े पेपर आए, लेकिन स्थिति अचल अडोल एक रस रहे, एक रस स्थिति का तपस्वियों का ये आसन है। इस आसन पर ऐसे बैठ जाओ कोई हिला नहीं सकता, तब तो अचल घर यादगार बना है, चंचल घर नहीं, अचल घर है। अंगद की तरह अचल, कोई हिला नहीं सकता, पांव को भी नहीं हिला सकता, लेकिन वो तब होगा जब बहुत अटूट निश्चय होगा बाबा में, ड्रामा में, कि मुझ आत्मा का कोई भी क्षण अकल्याणकारी नहीं है, मेरा बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, जो सीन हो रही है उसमें सब में कल्याण समाया। ये जब अटूट निश्चय होगा तब अचल स्थिति रहेगी। अगर जरा भी कहीं संकल्प में भी हलचल तभी आती जब संशय होता है, जरा भी संशय ना आए, ध्यान देना। अचल स्थिति का आसन है और इतनी मस्त स्थिति है जिसे कोई हिला नहीं सकता है। संसार के हर कार्य को निभा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कोई चंचलता नहीं है, बिल्कुल स्थिर है। चौथी स्थिति चिंता मुक्त स्थिति, निश्चिंत स्थिति, बेगमपुर के बादशाह की स्थिति है। ब्रह्मा बाबा का एक पोज देखना, हिस्ट्री हॉल के अंदर अगर देखेंगे पांडव भवन में, तो एक बहुत अच्छा पोज है। झरने पानी के बह रहे हैं, पहाड़ी है, और बाबा ऐसे टेका लगा के हाथ का लेटा हुआ है, एकदम बेफिक्र बादशाह। बाबा जितनी जवाबदारियां तो कोई के पास नहीं है, सब बातों का सामना किया, परिवार का भी किया, लौकिक का भी किया, अलौकिक का भी किया। इतने बड़े संगठन को पालना और उसमें भी परीक्षाओं पर परीक्षाएं, हर प्रकार की परीक्षाएं। 14 साल तक तो मौज से कराची में रहे, तपस्या की, योग किया, भट्टी की, लेकिन आबू आते ही कितनी परीक्षाएं आई, खाने पीने के लिए भी नहीं रहा, बिगड़ी पार्ट हो गया, बीमारियां इतनी आ गई जो कोई सोच भी नहीं सकता, पैसा एक नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, दवाई कोई नहीं, और इतनी सारी पेपर्स एक के बाद एक। लेकिन बाबा कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, बेगमपुर का बादशाह। बाबा का यज्ञ है खिलाने वाला, वो है चलाने वाला, वो है स्थापना होनी ही है। बहुत निश्चिंत स्थिति। कहानियां सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा बाबा ने कितनी परीक्षाओं के बीच में अपने आप को एकदम निश्चिंत बेगमपुर का वासा बना करके रखा। कितना अटूट निश्चय होगा बाबा के ऊपर, ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा पर कितना निश्चय होगा, इसके आधार से वो ऐसी स्थिति बना करके बिल्कुल लाइट रहे। तो चिंता मुक्त स्थिति हो सकती है। कई चिंताएं तो रहती हैं, माताओं को भी रहती हैं, परिवार की चिंताएं हैं, बच्चों की चिंताएं हैं, भाइयों को कमाने की चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, हैं चिंताएं कि नहीं है। देखना अपनी चिंताओं पर नजर डालना, चिंतामणि नहीं बनना, चिंता मुक्त मणि बनना है। तो ऐसे चिंता मुक्त स्थिति में मैं आत्मा रह सकती हूँ। फिर एक पांचवी स्थिति आएगी, बिल्कुल प्योर गोल्ड से भी ऊपर, एकदम डायमंड चमकता हुआ हीरा। एक पर्सनालिटी है, एक चलते फिरते उठते बैठते इस पर्सनालिटी का अनुभव, बहुत ऊंची स्थिति, संपूर्ण पावन स्थिति है। वैसे अभी तक कोई आत्मा ऐसा नहीं चैलेंज दे सकती है कि संपूर्ण पावन में बन गया, कुछ न कुछ शरीर है जब तक बाबा कहता है, कुछ न कुछ अपवित्रता का अंश है, क्योंकि ये अपवित्रता के बीच से जन्म हुआ है। इस प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी प्योरिटी, पवित्र विचारों का एक बहुत सुंदर आभा मंडल, एकदम रियल डायमंड स्टेज है ये, डायमंड स्थिति, जिसके अंदर इम्प्योरिटी का नाम निशान न रहे। मन वचन कर्म में जैसे बिल्कुल मैं स्वच्छ हीरा हूँ, कोई दाग नहीं है, बेदाग हीरा, वो स्थिति पांचवी स्थिति है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना करके फिर उपराम, एकदम उपराम स्थिति जैसे ब्रह्मा बाबा की रही, इतनी सारी बातों को देखते हुए भी उपराम हो गया। अब ऐसी स्थितियां बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां हैं ना संगम युग की, और ब्रह्मा बाबा ने ये सब स्थितियां प्राप्त की हैं। वैराग्य की भी थी, अनासक्त की भी थी, उपरांता की भी थी। तो हम सब बाबा को फॉलो करने वाले बच्चे, बाबा ने अगर ऐसी स्थिति को प्राप्त किया तो किस विधि से प्राप्त किया, इसके लिए कुछ बातें हमारे ध्यान पर जो आती हैं कि अगर हम सब ये स्थितियां प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात कि हम अपनी आंतरिक स्थिति को निर्दोष स्थिति बना लें। निर्दोष, हर आत्मा इस पार्ट के ड्रामा के अंदर निर्दोष है। कोई गलत कर रहा है तो भी निर्दोष है। सोचना, विचार करना, कल बाबा ने कहा कि अगर कोई गाली दे रहा भी होगा तो भी निर्दोष है वो, कुछ इसका हिसाब पार्ट है, परवश है कहीं से, उसके प्रति भी बदला लेने की भावना ना आए। है बहुत बड़ी बात, अगर देखो सचमुच ज्ञान बहुत वर्णन करने में सहज लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तो मुझे कोई गाली देने लगे तो सहन होगा। सोचना, विचार करना, कोई उल्टा बोले, कोई कुछ करे, चलो नहीं अगर जवाब देंगे तो मूड तो खराब हो जाएगा, खुशी तो गायब हो जाएगी, थोड़े समय के लिए चेहरा तो उतर जाएगा, देखो ऐसे मेरे क्यों बोलता है, मैंने क्या इसके साथ किया। कई तो वर्णन भी करना शुरू कर देंगे, नहीं सहन होगा तो फिर कहें कब तक सहन करूं, नहीं होता। बड़ी बात है ना, इसलिए बहुत ध्यान देना कि हर आत्मा इस ड्रामा के अंदर निर्दोष है, बना बनाया ड्रामा चला है। और वो निर्दोष स्थिति अगर बन गई तो कई प्रकार की स्थितियां स्वतः बन जाएंगी। और ध्यान ये रखना है कि हर आत्मा मुझे दुआएं देता रहे, कुछ न कुछ मैं ऐसा करूं जो बाबा की, परिवार की, सब की दुआएं मिलती रहें। अगर दुआओं का स्टॉक होगा ना तो बहुत से झमेलों से मुक्त हो जाएंगे। वो मदद करती हैं, साथ देती हैं, कोई पेपर आएगा वो दुआएं हैं। जैसे हमारी दादी कहती थी, जब शरीर का पेपर आया, पेपर तो बहुत सारे आए, लेकिन जब शरीर का आ गया तो बड़ा पेपर तो शरीर का ही होता है ना, सबसे ज्यादा आत्मा के समीप है। तो दादी कहती थी सबके दुआएं, कभी भी उन्होंने चेहरे पर आह शब्द नहीं लिया, कभी नहीं कहा मैं बीमार हूं, कभी मुख से नहीं निकला मैं बीमार हूं, मुझे कुछ हुआ है, नहीं, ये डॉक्टरों का हिसाब किताब है, बाकी मेरे सब की दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं, परिवार की दुआएं। और वो दुआएं तभी ली जब इतनी आत्माओं को सुख दिया, साथ दिया, मदद की। तो दुआएं स्थिति बनाने में बहुत हेल्प कर देती है। इसलिए ध्यान रखो कि जो सेवाएं हमें मिली हैं उन सेवाओं को मैं इतना परफेक्ट रीति से करूं, रुचि से करूं, जैसी भी हैं, जो हर आत्मा के दिल के दुआएं मिल जाएं। और आज्ञाकारी बनकर के बाबा की श्रीमत को हाजी करके चलूं, जो बाबा भी खुश होकर के दुआएं देने लगे। आज मैं दादी से रूरियान कर रहा था तो दादी कहती अभी मैं क्या सेवा करती हूँ, जानकी दादी, तो हमने कहा दादी आप बहुत सेवा कर रही हैं, आप क्यों ऐसा सोचती नहीं सेवा कर रहे हैं। तो बोली क्या सेवा करती हूँ, तो हमने कहा आप बैठी हैं यहाँ से, आप शांति के, पवित्रता के, शक्ति के प्रकंपन फैला रही हैं, इससे बड़ी सेवा क्या होगा, वायुमंडल शक्तिशाली बन रहा। बोली नहीं नहीं और बताओ। कहती है मैं दया के, रहम के, करुणा के वाइब्रेशन फैला रही हूँ, सबके ऊपर दयालु, कृपालु, एकदम रहम की दृष्टि है, सबको जैसे क्षमा कर दिया, कुछ नहीं, सब ठीक है। कितनी ऊंची स्थिति होगी, वो वाइब्रेशन जो फैला रहा है बैठा हुआ, बहुत बड़ी सेवा है। दया कृपा जैसे बरस रही है, सब निर्दोष हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं, सब बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत ऊंची भावनाएं हैं। तो हम सभी भी अगर सब की दुआएं लेते चलें। तीसरा, हरेक अपने सम्मान में रहो, मुझे कोई मान दे या न दे, मैं अपने स्वमान में रहूं और अपने आप को सम्मान दूं। लक्ष्य है मैं सबको दूं, बाबा ने मुझे दाता बनाया है, मुझे सबको देना है। देने की एक भावना आंतरिक रहे और अंदर से अपना स्वमान, कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट, अपना चिंतन, अपने आप को पढ़ाएं, अपने आप को रोज कोई ऊंचा लक्ष्य दें, अपने आप को कुछ नशा चढ़ाएं। जो कल की मुरली में था बच्चे, हिम्मत, निश्चय और नशा, ये तीनों बातों पर ध्यान देना। हिम्मत का कदम कभी पीछे नहीं हटाना। हिम्मत सांस है ब्राह्मण जीवन की, हिम्मत है तो मदद है, ऐसे भगवान मदद नहीं करता। मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा, फिर कहोगे क्या करूं, बाबा तो मदद करता ही नहीं है, मैं कितना बाबा को कहती हूं मदद ही नहीं करता है, बाबा तो मैं ऐसे मदद नहीं करता। कदम बढ़ाओ हिम्मत का, फिर देखो मदद मिलती या नहीं। कोई भी श्रेष्ठ कार्य के लिए हिम्मत का कदम बच्चे का है तो बाबा की मदद है। तो हिम्मत कभी भी कम ना हो, हिम्मत सांस है और सदा के लिए हमारे साथ रहनी चाहिए। तो पुरुषार्थ में कोई भी पेपर हो उसको पार करने के लिए हिम्मत, निश्चय, नशा, नशा माना अपना स्वमान, स्वयं स्वयं को मान देना। और स्वयं स्वयं को मान देंगे तो अपने आप सब मान देंगे, मांगने से मान मिलता नहीं है। और जितने बाबा की मुरलियों में टाइटल्स आते हैं रोज कुछ न कुछ, जैसे कल बाबा ने कहा सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो आत्मा में माने, कितना एक छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी बात है। ज्ञानी बहुत कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन आत्मविमानी कहाँ रहते हैं? आत्मविमानी स्थिति अगर हमारी बनी हुई है तो हम ज्ञानी सोते हैं। तो ऐसी ऐसी बाबा की बातें लेकर के एक अच्छा चिंतन करके अपने सम्मान में रहना, नशे में रहना, ताकि कोई भी बात की बेपरवाही आ जाए। कोई परवाह नहीं, परवाह है तो केवल एक है कि श्रीमत का कहीं उल्लंघन न हो। श्रीमत की आज्ञाओं का अगर सूक्ष्म में भी कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर बोझ चढ़ता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है, स्थिति हलचल में आ जाती है, कोई भी स्थिति बन नहीं पाती है अगर श्रीमत का जरा भी कहीं उल्लंघन होता है तो। इसलिए अंडरलाइन करो, सबको पता है जितनी ब्राह्मण आत्माएं हैं कोई भी बाबा का ऐसा बच्चा नहीं है जिसको पता न हो कि बाबा की श्रीमत क्या है। बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी श्रीमत, सब प्रकार की प्रवृत्ति वालों को अलग, कुमार कुमारियों को अलग, नौकरी टोकरी करने वालों को अलग, बिजनेस करने वालों को अलग, हर एक को बाबा ने अपनी प्रकार की मत दी है, श्रेष्ठ मत दी है। और उस श्रेष्ठ मत के अनुसार अपने आप को चलाना, उस बाउंड्री के अंदर रहना, आप देखेंगे बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। और श्रेष्ठ स्थितियों में अगर हम रहते हैं, सर्वोच्च स्थितियों का अनुभव करते हैं, तो व्यर्थ नेगेटिव अपने आप अवॉइड हो जाएगा, आएगा ही नहीं। अगर आता भी है तो युद्ध में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी। तो हम सब इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए मेहनत मुक्त वर्ष मनाएं। तपस्या वर्ष, तपस्या में मेहनत न लगे, ऐसे नहीं तपस्या वर्ष तो घोषित हो गया लेकिन बहुत मेहनत है। मेहनत करके तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों की मेहनत देखना ही नहीं चाहता। अगर मेहनत कर रहे हैं तो युद्ध चलेगी, युद्ध करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए मेहनत थकावट का अनुभव कराती है, मेहनत न लगे बहुत सरल सहज पुरुषार्थी, सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी, ऐसा बन करके हम सब लक्ष्य रखेंगे और संकल्प को रिवाइज करेंगे। सिर्फ लक्ष्य मिल गया और रिवाइज नहीं किया तो लक्षण नहीं आएंगे। लक्ष्य अगर हमको बनना ही है बाबा के जैसा, तो उसको रिवाइज करते हुए उन लक्षणों पर ध्यान दें, कौन से लक्षण की कमी लक्ष्य से दूर ले जा रही है। अगर मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य लिया हमने फरिश्ता बनने का, लक्षण है या बहुत सारे बोझ लेकर के चल रहे हैं, फरिश्ता कैसे बनेंगे? अगर संबंधों में, व्यवहार में बहुत सारे हमने संबंध बनाए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, तो रिश्ता जोड़ा हुआ है, फरिश्ता कैसे बनेंगे? इसलिए सबके बीच में रहते हुए न्यारा प्यारा डबल लाइट रह करके अब बाबा को पालना का रिटर्न करना है। हम सब लक्ष्य रखें कि इस तपस्या वर्ष में और विशेष पहले जनवरी मास में हम सब ऐसे अंतर्मुखी सदा सुखी बहुत प्रसन्न चित्त स्थिति में रह करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके बाबा की पालना का रिटर्न करें। अब प्रत्यक्षता में अधिक समय नहीं है, दिखाई देता है कि चारों ओर संदेश बहुत फास्ट गति से फैल रहा है और एक दिन लगेगा कि यही है यही है यही है। लगता है आप लोगों को सब कहेंगे यही है बस, तो बाबा प्रत्यक्ष होगा लेकिन प्रत्यक्षता के साथ पश्चाताप भी होगा लोगों को, जिन्होंने नहीं समझा, जिन्होंने नहीं उसको कदर दी, उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। लेकिन पश्चाताप भी अधिक समय नहीं चलता, परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए प्रत्यक्षता के दिन समीप दिखाई दे रहे हैं और हम सब बाबा के बच्चे अपनी श्रेष्ठ स्थितियां बनाने के लिए इस वर्ष खूब अच्छी तपस्या की लहर बना दें, सब स्थानों पर तपस्या चले ताकि कोई भी छोटे मोटे विघ्न खत्म हो जाएं और एक बहुत अच्छा निर्विघ्न वायुमंडल बने, आत्माओं के दुख और अशांति दूर हो, ऐसी भावना है। ओम शांति।
जी। मैंने